आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी में एक योद्धा होने का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब तलवार उठाना है या कुछ और? हमारे पास जो सत्संकल्प है वो कहता है कि असली लड़ाई कहीं और ही लड़ी जाती है।
बिल्कुल,
ये विचार पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण सत्संकल्प से लिया गया है। ये एक तरह से बेहतर दुनिया बनाने के लिए संकल्पों का एक खाका है
जी।
और इसका 15वां संकल्प खास तौर पर एक्शन की बात करता है। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं।
ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बदलाव के लिए एक साथ दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाता है।
दो रास्ते,
हाँ, एक तरफ जो सज्जन हैं, जो बातों से समझते हैं, उनके लिए विवेक, तर्क और प्रेम का रास्ता है, लेकिन दूसरी तरफ जो दुष्ट और हठी हैं, उनके लिए लोहार की नीति अपनाने को कहा गया है।
अच्छा,
महाभारत का उदाहरण यहां बिल्कुल सही बैठता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की हर कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना
तो फिर अर्जुन के बाणों का सहारा लेना ही पड़ा।
बिल्कुल वही बात है।
लोहार की नीति, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। इसका मतलब है सख्ती से पेश आना है?
नहीं, सिर्फ कठोरता नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है।
अच्छा,
इसका मतलब है उन समस्याओं से सीधे टकराना जो प्यार से या समझाने से हल नहीं होती। अब सोचिए, एक लोहार जानता है कि ठंडे लोहे पर चोट करने का कोई फायदा नहीं।
सही बात है।
वो पहले लोहे को सही तापमान तक तपाता है और फिर सटीक चोट करता है। वैसे ही समाज की कुछ बुराइयों से लड़ने के लिए सही समय पर सही और मजबूत कदम उठाने पड़ते हैं। ये एक सोची समझी मजबूत कार्रवाई है, सिर्फ गुस्सा नहीं।
ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब कि हम बाहरी दुश्मनों से लड़ने की सोचते हैं, पर असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठे हैं।
बिल्कुल,
ये तो लड़ाई का मैदान ही बदल देता है ना?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर गीता का रहस्यवाद सामने आता है। सत्संकल्प यही कहता है कि सबसे बड़ी और असली लड़ाई तो अपने ही दोष दुर्गुणों से है। हमारा आलस्य, हमारा गुस्सा, असंयम, यही हमारे असली कौरव हैं।
अच्छा,
और हमें अर्जुन बनकर इनसे लड़ना है। जिसने खुद पर विजय पाली वही तो सच्चा विजेता है।
सही है।
अगर हम इन भीतरी बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे तो हमारे अच्छे गुण कभी पनप ही नहीं सकते। जैसे खरपतवार के बीच फसल नहीं उग सकती।
ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर समाज बदलने की बात करते हैं, लेकिन ये संकल्प कहता है कि असली क्रांति तो अपने अंदर से शुरू होती है।
जी,
अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता खुद ही गुस्से और अहंकार से भरा है, तो क्या वो सच में समाज में शांति ला सकता है? ये तो पूरी लड़ाई को एक बाहरी संघर्ष से हटाकर एक आंतरिक साधना बना देता है।
आपने एकदम सार पकड़ लिया। और जब व्यक्ति ये अंदरूनी लड़ाई जीतता है, तभी वो सामाजिक लड़ाई के लिए ठीक से तैयार होता है। सत्संकल्प में समाज में फैले छल, झूठ और पाखंड का जिक्र है, और कुछ कुरीतियों को तो असुर की संज्ञा दी गई है।
असुर? जैसे कि कौन सी कुरीतियां?
जैसे विवाहोन्माद।
विवाहोन्माद?
हाँ, यानी शादियों में होने वाली बेहिसाब फिजूल खर्ची। ये परिवारों को कर्ज में डुबोकर बेईमान बनने पर मजबूर करती है।
हाँ, ये तो है।
इसके अलावा मृत्यु भोज जैसी प्रथाएं, जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेद और नारी का तिरस्कार, इन सबके खिलाफ सिर्फ भाषण नहीं देने हैं।
तो फिर क्या करना है?
सत्संकल्प का आह्वान है कि इनसे सक्रिय होकर लड़ा जाए, भले ही इसके लिए अस्थायी अशांति का खतरा क्यों ना उठाना पड़े।
तो इस सबको मिलाकर देखें तो आज के युग का योद्धा कौन है? जाहिर है उसके हाथ में तलवार तो नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं। आज का योद्धा वो है जिसमें समाज में फैली अनीति, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने का साहस हो। सत्संकल्प के अनुसार इसमें भ्रष्ट लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना,
अच्छा,
धर्म के नाम पर ठगने वालों का पर्दाफाश करना, और शासन प्रशासन को लोक मंगल के लिए काम करने पर विवश करना, ये सब शामिल हैं।
तो इसके लिए हथियारों की नहीं?
नहीं, इसके लिए हथियारों की नहीं, बल्कि एक प्रबल लोकमत यानी जन जागरूकता की शक्ति की जरूरत है। जैसा नेताजी सुभाष बोस ने भी कहा था।
क्या कहा था उन्होंने?
कि सबसे बड़ी शक्ति धन या हथियार नहीं, बल्कि संकल्प लिए हुए मनुष्य हैं।
तो कुल मिलाकर ये 15वां संकल्प सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो व्यक्तिगत शुद्धि से लेकर सामाजिक नव निर्माण तक एक संपूर्ण क्रांति का ब्लूप्रिंट है।
जी,
एक ऐसा धर्म युद्ध जिसे हर स्तर पर लड़ा जाना है, अंदर भी और बाहर भी एक साथ।
और ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है।
क्या?
सत्संकल्प कहता है कि अन्याय को चुपचाप सहते रहने से कभी सच्ची शांति स्थापित नहीं हो सकती।
सही बात है।
तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी कभी हमारी जो व्यक्तिगत शांति है, हमारा जो आराम है, वो समाज में एक बड़े अन्याय को पनपने का मौका तो नहीं दे देता?
ये तो बहुत गहरा सवाल है।
अपने निजी सुकून और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच वो सही संतुलन क्या होना चाहिए, ये सोचना होगा।